सज्जनों, आप सबको नमस्ते। पिछले दो हफ्ते हम सेलिब्रेशन में रहे, हमारे डीएवी संस्कृति स्कूल और डीएवी मॉन्टेसरी एंड एलिमेंट्री स्कूल के एनुअल डे फंक्शन एंजॉय किया। अब अगेन विल कम बैक टू आर रेगुलर सत्संग पैटर्न। आज का विषय है 16 संस्कार या 16 सैक्रमेंट्स, जो हमारे वैदिक संस्कृति में, कल्चर में, जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए जो रिलीजियस सैक्रमेंट्स किए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, उनके इम्पोर्टेंस वैल्यूज समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हम डे टू डे लाइफ में जो संस्कार शब्द यूज करते हैं, वो दो अर्थ में यूज होता है। एक संस्कार जब आप कर्म की थ्योरी समझते समय पढ़ते हैं, वहां संस्कार का मतलब होता है मेमोरीज, जो कलेक्शन ऑफ मेमोरीज होता है वो संस्कार है, जो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को जो डोमिनेट करता है, डिफाइन करता है, जो सबकॉन्शियस मेमोरीज है वो संस्कार है। पर आज जिस संस्कार की बात करेंगे वो दूसरा है, वो जो रिलीजियस सैक्रमेंट्स होते हैं, जैसे विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार वगैरह। संस्कार का सिंपल मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन, किसी चीज को साफ करना, क्लियर करना, पॉलिश करना, नरिश करना। आप अपने बैकयार्ड में पौधे लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, तो प्लांट्स को थोड़ी देर के बाद उसको काट छांट करते रहते हैं, उसको एक शेप देते हैं, उसकी केयर करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड, जो भी आप उसको ठीक करने के लिए। ऑल दीज आर कॉल्ड संस्कार। आज आप घर में वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, आप सीधा कच्चा नहीं खाते हैं, आप इसको एक प्रॉपर प्रोसेस से लेते हैं, आप काटते हैं, छांटते हैं, अपने हिसाब से साइज बनाते हैं, उसमें अलग अलग तरह के मसाला डालते हैं, तो अलग अलग टेस्ट पैदा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड संस्कार। संस्कार वो चीजें हैं जिसको आप किसी चीज को पर्टिकुलर वे में बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप प्रोसेस करते हैं उसी को संस्कार कहते हैं। स्पेशली जब आप उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं, एक नया शेप देते हैं। मिट्टी है तो मिट्टी को आप संस्कार करके आप घड़ा बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, हजारों चीज आप बना सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड संस्कार। आज जब किसी चीज से आप दूसरी चीज में ट्रांसफर करते हैं, यही चीज इंसानों में लागू होता है। जब हम अपने बच्चों को पैदा करके उनके एक प्रॉपर वे में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक शेप देना चाहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, तीनों लेवल पर उनको एक पॉलिश करना चाहते हैं, वो जो प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग है उसी को हम संस्कार कहते हैं। वो संस्कार हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, बहुत लोग समझदारी के साथ करते हैं विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च, कुछ लोग बिना समझे जो जैसा समझ में आया वैसे बच्चों को पाल लेते हैं। जनरली हमारे शास्त्रों में जो संस्कार है उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया, उसमें तीन चीजें हम इंसानों के लिए अपने बच्चों के लिए करते हैं। एक तो दोषापनयनम, उसमें जो कमियां हैं पैदा होने के साथ उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट थिंग। इंटेलेक्चुअली, फिजिकली जो भी है उसको आप ऐसे लेवल पर लाते हैं, जो उसमें कमी है उसको आप ठीक कर लेते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। हिनांग पूर्ति, जो उसमें डेफिशिएंसी है आप उसको फिक्स करते हैं। और गुणाधानम, उसमें एक्स्ट्रा वैल्यूज आप एड करते हैं, एनरिच करते हैं, उसमें नए नए वैल्यूज उसमें लाते हैं। ये पूरे पैकेज का नाम होता है संस्कार। वो संस्कार आप वैसे भी कर सकते हैं, पर जब अब आप उसके साथ रिलीजियसिटी लाते हैं, धर्म को लाते हैं, स्पिरिचुअलिटी लाते हैं, वो और ज्यादा सुंदर, और ज्यादा भव्य और सुंदर, अच्छा बन जाता है। जिसको हम संस्कार कहते हैं, सैक्रमेंट्स या सेरेमनीज कहते हैं, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होता है। एक तो जो प्रोसेस आप पॉलिश करने के लिए बच्चे को करते हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व रहता है। नंबर टू, बच्चे की जो अलग अलग इंसान की जो अलग अलग स्टेजेस है, पैदा होने के पहले से जो कंसेप्शन से लेकर मरने तक, उसके हर वो सिंगल अचीवमेंट को या चेंज को जहां से वो ट्रांसफर होता है एक स्टेज से दूसरा स्टेज, उसको प्रॉपरली सेलिब्रेट करना, और सेलिब्रेट करने के साथ साथ उसको वो फील होता है हाउ इंपॉर्टेंट ही और शी इज इन हिज हर फैमिली। उसको फैमिली में अपना एक इंपॉर्टेंस का फीलिंग होता है, सोशल जो गैदरिंग होता है उसको एक अच्छा लगता है कि मेरे लिए इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं। आजकल हम ऐसा फीलिंग क्रिएट करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं, बच्चों को रेस्टोरेंट ले जाते हैं, अलग तरह के बर्थडे पार्टी बड़े दूसरे रूप में सेलिब्रेट करते हैं पार्टी के रूप में। पार्टी का जो रिलीजियस फॉर्म है उसी को संस्कार आप कह सकते हैं। उसमें ये जो सेरेमनीज होता है, एक तो एक्नोलेजमेंट होता है कि हमारे घर में जो बच्चा है उसको वो फील होता है, और वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो बच्चे के रूप में हमारे घर में है या धीरे धीरे वो बड़ा होता है, मोस्ट ऑफ संस्कार आज बचपन में ही हो जाता है, गिने चुने संस्कार रहते हैं जो लाइफ में जो स्टेजेस चेंज होते हैं उसमें सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्योंकि जब आप संस्कार करते हैं तो आप उसमें आप रिलीजियस पार्ट भी होता है, आप हवन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं, उसमें बच्चे को सेंटर में रहता है बच्चा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप शादी में देखिए, शादी तो आप कोर्ट में भी कर सकते हैं, चुपचाप गए लड़का लड़की गए पेरेंट्स के साथ गए कोर्ट में शादी किया आ जाते, बहुत लोग करते भी हैं, पर आप ऐसा नहीं करते, आप सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपने फैमिली रिलेटिव्स को बुलाते हैं, अलग अलग तरह के, कभी कभी तो लोग 5 दिन 7 दिन तक करते हैं। उसमें वो बच्चे को उस व्यक्ति को फील होता है, वो कुछ दिन के लिए भी हो उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको फील होता है, साइकोलॉजिकली उसको उसमें बूस्ट मिलता है। नंबर टू, हम एक सोशल एनिमल है, इंसान है, अकेले तो जी नहीं सकते, पैसा कमा के क्या करेंगे, तो जब तक हमारा सोशल इंटरेक्शन ना हो, हमारे फैमिली मेंबर्स अपने अपने काम में व्यस्त हैं जिंदगी भर, हमारे फ्रेंड्स हैं, यही ऑकेजन होता है जब आप सबको बुलाते हैं, एक दूसरे से मेल करते हैं, अपने दुख और सुख में शेयर करते हैं। दुख का भी सेरेमनीज होता है, जब आपकी घर में किसी का डेथ होता है उसको भी हम संस्कार कहते हैं, वो भी सेरेमनी है, उसमें भी सुख दुख हम शेयर करते हैं, और इससे एक हेल्दी एटमोस्फियर हमारे चारों तरफ बनता है, हमारा अपना एक सर्कल बनता है, फ्रेंड सर्कल रिलेटिव्स का सर्कल बनता है, एक अच्छी सोसाइटी बनती है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनता है, और उस सोसाइटी के अंदर हमारा बच्चा ग्रो करता है इंडिविजुअली नहीं, जहां 24 घंटे वो प्राइवेसी ढूंढता हो ऐसा बच्चा नहीं, जो बच्चा जो सोसाइटी की पार्ट के रूप में अपने आप को सोचता है, जो फैमिली का एक मेंबर के रूप में सोचता है, जो होलिस्टिक ग्रोथ होता है वो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे को भी प्राइवेसी चाहिए, दरवाजा बंद होना चाहिए, मां बाप भी आए तो परमिशन लेकर के आए, ये जिस तरह की इंसेनिटी धीरे धीरे बच्चों के अंदर आता है, आगे जाकर के उनके मेंटल प्रॉब्लम्स उसी तरह के डेवलप होते हैं। सुख में तो कोई साथ नहीं चाहिए पर दुख में सब चाहिए, ऐसा होता नहीं है, जिसको आपने सुख में साथ खड़ा करवाया दुख में भी वही खड़ा होगा, पर हम जो सो कॉल्ड प्राइवेसी प्रिफर्ड करने वाले लोग हैं, हमारी प्राइवेसी हमारी डे टू डे लाइफ में सुख में कोई हमारे साथ ना हो, इसका अर्थ नहीं कि मैं कोई एडवोकेट कर रहा हूं कि आपके लाइफ में कोई प्राइवेसी ना हो, पर द वे आजकल के लोग बच्चे प्राइवेसी ढूंढते हैं, इवन अपने एक घर में दो बच्चे हैं, दो मां बाप हैं, सबके अपनी अपनी प्राइवेसी है, भाई बहन को पता नहीं कौन क्या कर रहा है, मां बाप को पता नहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, सब प्राइवेट हैं, खाने के टेबल पर मिलते हैं, शकल देखते हैं, टीवी भी आपको बहुत सारे सब अलग अलग हो जाता है। तो हम एक सोसाइटी में, छोड़िए एक फैमिली में रहते हुए भी सब हम अलग अलग हैं। तो ये जो सेरेमनी जो संस्कार है हमको बांधता है, एक अंदर एक अलग टाइप की सोशल माइंड बनाता है जहां हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ये फील कराता है। तो जो संस्कार है, वैसे धर्मशास्त्र में, अलग अलग धर्मशास्त्रों में इनके अलग अलग नंबर्स हैं, पर जो आमतौर पर जो सबके द्वारा मान्य है 16 संस्कार, मतलब 16 सैक्रमेंट्स है, वो मोस्टली सारे धर्मशास्त्रों में या लेटर पीरियड में सबको 16 संस्कार एक्सेप्टेबल है। उन्हीं 16 संस्कारों का हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसको हम तीन तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक, बच्चे के पैदा होने से पहले के जो सेरेमनीज होते हैं जिसको आप प्री नेटल सेरेमनीज कहते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद एक साल तक जो सेरेमनीज होते हैं वो एक सेकेंड कैटेगरी का आता है, जो आफ्टर बर्थ बच्चे के लिए। फिर 7-8 साल तक बच्चे के जो सेरेमनीज होते हैं, मोस्ट ऑफ सेरेमनीज उसके बच्चे के स्कूल गोइंग होने तक हो जाता है। उसके बाद 4-5 बचते हैं शादी करना, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला लेते हैं बच्चे के पैदा होने से पहले। आप एक घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अपने घर में कोई नई चीज लाते हैं, आप एक प्लानिंग करते हैं, मैं अगर अच्छी गाड़ी लूंगा उसके लिए गैराज होना चाहिए, उसके लिए ये चीजें चाहिए। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उस पहले से उसकी तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं, क्या खाएगा नहीं खाएगा, कहां रहेगा, पूरी प्लानिंग करते हैं। और आपके घर में एक आत्मा आती है, बच्चा आता है, जो एक लाइफ लेकर आता है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हमारे पास उसके आने से पहले कोई तैयारी नहीं है तो कितना हालत खराब होगी। ये जो प्लानिंग करने का और उसको एक स्टैंडर्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग करना विथ ऑल सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। वो सेलिब्रेशन से उसको वो कॉन्फिडेंस आता है, उसको बूस्ट मिलता है, वो एंजॉय करता है। हमारे कल्चर बड़ा अनोखा कल्चर है, हम स्पिरिचुअलिटी को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन स्पिरिचुअलिटी भी क्या है, जब आप आत्मा को एंजॉय करते हो, जब आप आत्मा का ज्ञान करते हो, वो भी सेलिब्रेशन होता है, आनंद का अनुभव है। आनंद इज वेरी मच पार्ट ऑफ एवरी सिंगल फैक्टर ऑफ इन आवर लाइफ। वो आनंद मैटेरियल हो जाता है तो सुख हो जाता है, स्पिरिचुअल होता है तो आनंद हो जाता है। तो प्लानिंग जरूरी होती है। बच्चा आने से पहले हम फिजिकली मेंटली अपने आप को हेल्दी बनाएं, प्लानिंग करें। ज्यादातर देखा गया है जहां भी मोस्टली जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, मोस्टली ये पेरेंट्स की कंसेप्शन के समय और प्रेगनेंसी के समय जो जिस तरह के वो केयरलेस लाइफ जीने वाले मोस्ट ऑफ पेरेंट्स के आगे बच्चों के साथ जो डिसेबिलिटीमेंट आता है उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बच्चा जब पेट में होता है या होने की तैयारी में होता है तो मां बाप का व्यवहार के कारण भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों की डिसेबिलिटीमेंट होने में, फिजिकल या मेंटल दोनों स्टेज में। जब हम प्लान करें बच्चा आए तो प्रॉपर प्लानिंग हो, फिजिकली मेंटली हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके हम प्लानिंग करें। उसके लिए भी प्राचीन काल में एक पर्टिकुलर संस्कार होता था जिसको हम कहते थे गर्भाधान संस्कार। मैसेज यही है कि आप प्रॉपर प्लान करिए। दोनों पुरुष और स्त्री, जब आपको लगे कि आप फिजिकली स्वस्थ हैं, मेंटल स्टेट आपका ठीक है, जब मैं स्वस्थ कहता हूं इट्स नॉट मेडिकली आप स्वस्थ हैं, मतलब आप किसी से भी दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, आप शराब पी करके अगर कंसेप्ट करें, आप ड्रग से इन्फ्लुएंस्ड हो या किसी दूसरे चीज से इन्फ्लुएंस्ड हो तब आपके बच्चे को धरती पर लाने की कोशिश करें तो बच्चा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही। सात्विक मन के साथ संतान को लाने की कोशिश करने का पहला उपाय होता है। जब बच्चा मां के पेट में आए, जब प्रेगनेंसी में के स्टेट में हो, तो उनको न केवल पत्नी को, पति और पत्नी को, बहुत सारे लाइफ को अलग ढंग से जीने की जरूरत है। क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, किस तरह के, आजकल डॉक्टर्स भी, काउंसिलर भी काउंसिलिंग करते हैं, वही चीजें बताते हैं जो प्राचीन काल में हमारे शास्त्र कहते थे, हमारे आचार्य लोग, ज्ञानी लोग समझाते थे, इस तरह की चीजें नहीं खाना, इस तरह की चीजें नहीं करना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, किसी तरह के ऐसी चीजें देखना सुनना करना नहीं जिसमें एग्रेशन हो, एजिटेशन हो, अलग अलग चीजें। जब हम चीजों को केयर नहीं करते, बच्चा वैसे ही आता है जैसे आप कोई फोर्थ हैंड गाड़ी खरीदते हैं, 1.5-2 हजार की गाड़ी जहां मिला उठा के ले आए, जैसे दिन दिन चले ना चले, तो हम एक बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए माहौल खराब बन के तैयार करते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान रखने के लिए गर्भाधान, द रिचुअल ऑफ कंसेप्शन, फिर 2-3 महीने के बाद पुंसवन, सब संस्कार में एक चीज जरूरी है कि आप रिलीजियस पार्ट को जोड़ के रखेंगे। आप हो हवन घर में पूजा हवन करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, 3 चीजें जरूरी होती है, हवन करना, पूजा पाठ, जो भी ईश्वरीय, जो भी धार्मिक कर्मकांड को करना जिससे घर में एक सात्विक वातावरण बने, फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना जिसे उत्सवमय वातावरण बने, और जो रूल्स और रेगुलेशन से उसको रिमाइंड करना और उसको फॉलो करना, ये 3 चीजें होता है। सीमंतोनयन, जब ऑलमोस्ट बच्चा फेटस जो है वो 4-5 महीने का हो जाता है, तो मां के माइंड में, बॉडी में जिस तरह के चेंजेस आते हैं, कभी कभी वो इरिटेट होती हैं और तरह के प्रॉब्लम आता है, उसको उस समय सहारे की जरूरत है। तो पति का धर्म है कि वो उसके साथ दें, उसको वो फील कराएं कितना वो इंपॉर्टेंट है उसकी, जब वो मेंटली ठीक ना हो या फिजिकली ठीक ना हो, उसको फील कराए, ही इज ऑलवेज विथ हर। और इसको भी हम सेलिब्रेशन के रूप में करते हैं, इसको हम कहते हैं सीमंतोनयन संस्कार। बच्चा पैदा होने के साथ सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। अगला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार होता है, बच्चा पैदा होता है और उसको रिकॉग्नाइज करना, हमारे घर में एक दिव्य आत्मा प्रवेश करती है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको प्यूरिफाई करना अपने घर में। पहले तो घरों में बच्चे होते थे, आजकल मोस्टली हॉस्पिटल में होते हैं, तो घर की साफ सफाई करना कि उसमें कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, मां और बच्चे को ध्यान रखना। पर अगेन वो सेलिब्रेशन जरूरी है, टू रिमाइंड एंड टू सेलिब्रेट, वो एक संस्कार है। फिर बच्चे के हर वो चीज जो पहली बार होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार आप उसको नाम देंगे, उसको कहते हैं नामकरण संस्कार। उसकी भी आजकल तो, आजकल क्या, पिछले 300-400 साल से भारत में बड़े उटपटांग नाम रखे। जब गांव के नाम देखेंगे, कल मैं किसी सुन रहा था, उसने पूछा आपका ऐसा नाम क्यों है, बोले क्या करें, हमारे गांव में ऐसा है कि बच्चा पैदा होने के दिन गांव में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है उसी इंसिडेंट के साथ नाम रख देते हैं। बोले ऐसा है कि जब मेरी बहन पैदा हुई तो गांव में कुछ लड़ाई हो रही थी, तो मेरी मां की बेटी, मेरी बहन का नाम रख दिया झगड़ी राम, तो तुम्हारा नाम क्या है, वे शीतला, बड़े बहुत बड़े राइटर हैं, तो उनका नाम है शीतला पांडे। बोले आपका नाम शीतला क्यों है, बोले जब मैं पैदा हुआ वो दिन शीतला की पूजा, शीतला देवी कुछ होती है उसकी पूजा होती है, तो मेरा नाम शीतला पांडे बन गया। धीरे धीरे हम पढ़े लिखे हुए, अब तब भी जो पढ़े लिखे लोग थे अच्छा नाम चुनते हैं, आज भी पढ़े लिखे लोग अच्छे नाम चुनने के चक्कर में, सुनने के अच्छे नाम तो चुनते पर मीनिंगलेस नाम चुनते। पर हमारे शास्त्र कहते हैं ये नाम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप इसको इग्नोर नहीं करना, और खास करके जो नाम आप दे रहे हैं उसका मीनिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट लाइफ में पड़ता है। बहुत बड़ा नहीं तो इंपैक्ट पड़ता है। अगर किसी का नाम का मीनिंग कुछ ऐसा खराब हो, मान लीजिए किसी का नाम दुर्योधन हो, और मजेदार बात है कि मैं ऐसे दर्जनों लोगों को नाम जानता हूं जिनका नाम दुर्योधन है। अब दुर्योधन एक कैरेक्टर है जो खराब चीजों का को रिप्रेजेंट करता है, और आप नोइंगली अननोइंगली बिना समझे बच्चे का नाम दुर्योधन रख दिया। अब बड़ा होने पर जब उसको कितना फील होता होगा, उसको कैसे चिढ़ाते होंगे, ये ध्यान देने की बात है। जो नाम रखें वो मीनिंगफुल हो, और हमारे शास्त्रों में उसकी क्राइटेरिया बनाया कि जब लड़कों का नाम रखे किन किन चीजों का ध्यान दें, कितने अक्षरों का नाम हो, वो सुनने में श्रुति मधुर हो, सुनने में मीठा हो, बोलने में आसान हो कि जल्दी से आप आसानी से बोल सकें, कितने अक्षर का हो, लंबा नाम नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लड़कियों के नाम हो तो ये चीजें लक्षण होना चाहिए, बहुत अच्छा एलैबोरेटली उसमें डिस्क्राइब्ड है। बॉटम लाइन है कि नाम ऐसा रखें जो मीनिंगफुल हो, न कि गूगल में जो नाम दे रखा है। मोस्ट ऑफ जो गूगल देख करके नाम चुनते हैं वो इतने एक्चुअल में इतने गलत नाम होते हैं, मीनिंग होते हैं, कभी कभी मीनिंगलेस, कभी कभी बहुत बुरा मीनिंग वाले होते हैं। मेक श्योर कि जो नाम आपने चुना मीनिंगफुल हो, गूगल के हिसाब से नहीं, असली कहीं डिक्शनरी फिक्शनरी देख के या किसी से पढ़े लिखे आदमी से डिस्कस करके। निष्क्रमण संस्कार, बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है धूप में वो सूरज को देखने के साथ, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती, इम्यून सिस्टम नहीं होता है कि वो फट से बड़े धूप में बाहर निकले, तो वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। बच्चा जब पहली बार मां के दूध के अलावा कुछ बाहर का खाना शुरू करे, सॉलिड फूड खाना शुरू करे, उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, एक साल से आगे बढ़ने लगता है, तो मुंडन संस्कार, कभी उसको चौल संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार भी बोलते हैं, बच्चे को पूरी तरह उसके बाल को शेव किया जाता है, क्योंकि पैदा होने के साथ जो बाल आया था अब वो बाल निकाल देते हैं, एक नए बाल उसमें आए, पॉलिश हो जाए, और जो मां के पेट से बाहर आने के बाद जिस तरह के बाल हो गए, फिर धीरे धीरे उसमें सर में खुजली होती है और तरह की समस्याएं होती हैं, तो नए बाल आते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपने उसके बाल को मुंडवा दिया, पर उसको सेलिब्रेशन के साथ करने का नाम है मुंडन संस्कार। अगला है कर्णवेद, छोटी छोटी चीजें हैं। अब कर्णवेद आजकल ज्यादा यूजफुल नहीं है, पहले जमाने में अगर आप टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, अगर कोई हिस्टोरिकल मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे पुरुष और स्त्री दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे कान में। आज भी बहुत सारे भारत में ऐसी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जहां पुरुष कान में पहनते हैं, गले में आजकल भी चेन वगैरह डालते रहते हैं, और जब हिपी कल्चर आया तो वेस्ट में भी धीरे धीरे सब आभूषण पहनने लग गए। तो आभूषण पहनना, अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करना, वो सिर्फ लेडीज का कोई प्रिविलेज नहीं था, वो दोनों की प्रिविलेज था, दोनों अच्छा दिखना को सुंदर देखना चाहते थे तो आभूषण पहनते थे। तो आभूषण पहनने के लिए कान और नाक छिदवाते थे, पर आप कभी भी छिदवा सकते हैं, पर उसके लिए एक पर्टिकुलर, क्योंकि बड़े एज में जाकर करें तो ज्यादा पेनफुल होगा क्योंकि आपकी बॉडी स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत छोटे उम्र में नहीं कर सकते थे, उसको भी सेलिब्रेशन के साथ हम करते थे, उसको कहते थे कर्णवेद संस्कार। यहां तक हो गया बिल्कुल बच्चे का 3-4 साल तक के जितने संस्कार है। अब जो मेन संस्कार है, बच्चा अब ग्रो कर रहा है, पैदा होने के साथ जन्मना जायते शूद्र, हर बच्चा पैदा इसी शूद्र होता है। शूद्र का अर्थ होता है इलिटरेट, अनपॉलिश्ड, उसमें कोई ज्ञान नहीं, कोई पॉलिशनेस नहीं। पशु और इंसान में कम फर्क, बच्चे में कम फर्क होता है, क्योंकि दोनों में समझ कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, डिस्क्रिमिनेटिव पावर कम है। वो कब आता है? सिर्फ एज बढ़ने से नहीं होता है, एजुकेशन से आता है, पढ़ने और लिखने से आता है। वो पढ़ने लिखने को जब बच्चा तैयार हो जाए, आजकल जो ऑफिशियल वो है कि फर्स्ट ग्रेड में बच्चा जाता है तो 6 साल का होना चाहिए, पहले था 8 साल का, अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग था, पर मैक्स मिनिमम 7 से 8 साल का था। तो बच्चा जब स्कूल जाता है, आजकल आप स्कूल कहते हैं, प्राचीन काल में गुरुकुल कहते थे। गुरुकुल का मतलब रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब जहां बच्चा जाता था तो वहीं रहता था। टीचर या उसके मां बाप पे 12, 13, 14, 15, 18 जितने साल तक भी वो पढ़ाई करेगा, जब तक वो ग्रेजुएट ना हो या जिस लेवल तक वो जाना चाहे, अब वो घर से दूर होता था, गुरु के स्कूल में, गुरु के घर में रहता था। गुरु और उसकी पत्नी और जो भी दूसरे गुरु लोग होते थे, वही उसके मां बाप हैं, वही उसके टीचर हैं। खाना पीना वो सिर्फ एजुकेशन नहीं देते थे, प्रोफेशनल एजुकेशन, हर तरह की शिक्षा, क्योंकि मां बाप से दूर बच्चा रहता था। पर वो जो गुरुकुल वो जाता था पढ़ने के लिए, उसका जो इनिशिएशन होता था, उसको हम कहते उपनयन संस्कार। आज भी बहुत सारे भारत में लोग कई संस्कार को करते हैं, अल्दो धीरे धीरे ये अपना इंपोर्टेंस खोता जा रहा है, बहुत सारे जगह ये रिचुअल के रूप में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि स्कूल, अब बच्चा 2-2.5 साल में स्कूल जाने लग जाता है, तो अब 8, 9, 10 साल, 12 साल में जब आप इनिशिएशन करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं बचता। पर अगर आप उस प्रोसीजर को समझें, जाने उसकी, जैसे शादी के जो हर प्रोसीजर का अपना एक इंपोर्टेंस है, उसकी मीनिंग है, उन मंत्रों का कितना सुंदर अर्थ है, इसी तरह जब आप बच्चे किसी भी एज में अगर आप उसका उपनयन संस्कार करते हैं, किसी भी एज का मतलब 8, 10, 11 साल तक जब बच्चा एक प्रॉपर अभी छोटेपन में होता है, एलिमेंट्री स्कूल तक रहता है, और बच्चे को आप समझाते हैं हर वो रिचुअल्स का मीनिंग, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड, वो जो मंत्र उसका मीनिंग, वो मंत्र और रिचुअल यही है कि वो पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ाई करके क्या करने वाला है, पढ़ाई करने से क्या होता है, इन सब का उसके लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है, वह है उपनयन संस्कार। एक दो एग्जाम्पल देंगे उपनयन संस्कार का जो महत्व है। जब उपनयन संस्कार होता है तो बच्चा जनेऊ पहनता है। जनेऊ जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो सैक्रेड थ्रेड है, जो आजकल तो वो खास करके यूएसए में ये भी एक चिड़ियाघर की चीज हो गया है, मतलब आपको देखने के लिए म्यूजियम जाना पड़ेगा ये सैक्रेड थ्रेड क्या होता है। और बहुत सारे लोग भारत में अभी भी, करोड़ों करोड़ों लोग इसको पहनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो उपनयन के साथ आपको वो जनेऊ सैक्रेड थ्रेड पहनना पड़ता है, 3 धागों की, बहुत सारे लोग 6 धागों की पहनते हैं। क्यों? ये वो रिमाइंड करने के लिए कि जब तुम पढ़ने जा रहे हो तो तुम्हें, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें पढ़ने से क्या करोगे, उस पढ़ाई का तुम क्या करोगे, ये याद रहे। हमारे जीवन में 3 तरह के लोन होते हैं, डेब्ट्स होते हैं पैदा होने के साथ ही, वो तुम याद करते रहना। पहला ऋषि ऋण, 1 धागा रिमाइंड करता है कि तुम्हारे जीवन में पिता माता का जो ऋण है, पितृ ऋण है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का तुम्हारे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, रिमेंबर इट फॉर एवर, जब तक लाइफ है इसको याद रखना, और जो हो सके करते रहना। जब भी भूल जाओ तुम्हारे मां बाप के बारे में, ये 1 धागा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे अपने पेरेंट्स के प्रति क्या जिम्मेदारी है, वो जो ऋण तुम्हारे ऊपर है। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि कहते हैं सीयर्स, जिन्होंने नॉलेज को, ज्ञान को रियलाइज किया और हमारे तक पहुंचाया, वेद से लेकर आज तक। उस बीच में वो अपौरुष या वेद हो या बाद में आने वाले ऋषि, ऋषि शब्द से सिर्फ वो मत सोचिए कि कोई भारत में जंगल में बैठा हुआ तपस्वी, जिसने भी किसी ना किसी ज्ञान को हमारे सामने प्रकट किया, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आप इसको साइंटिस्ट कहते हो, फिलोसोफर कहते हो, हमारे वर्ल्ड में हम इसको ऋषि मुनि कहते हैं। जिसने भी ज्ञान को जाना, किसी चीज को जाना और हमारे सामने रखा, और वो जो फ्लो ऑफ नॉलेज है, वो पहले सीयर ज्ञान को जानने वाले से लेकर मेरे क्लासरूम में पढ़ाने वाला मेरे टीचर तक, या घर में पढ़ते हुए वो बुक राइटर तक, वो जो पूरे सिस्टम है जिसमें हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, उस ऋषि से लेकर के आज तक, उन सबके प्रति मेरा ऋण है, डेब्ट है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट इन माई होल लाइफ। एजुकेशन पढ़ाई के बाद ये मुझे दूसरा चीज ध्यान रखना है कि जहां जिसके कारण मैं एजुकेटेड हुआ, उनके प्रति भी मेरा कुछ ऋण है। और एजुकेटेड आप सिर्फ क्लास टीचर से नहीं हुए, घर में पढ़ने वाले बुक से नहीं हुए, या बुक राइटर से नहीं हुए, उस बुक राइटर को जहां से ज्ञान मिला उससे भी हुए, उसको जहां से ज्ञान मिला उससे भी हुए। ये पूरा का पूरा सिस्टम है, फ्लो है। इसीलिए कहा ऋषि ऋण। आप ये मत सोचो कि आपको पढ़ाने वाला गुरु के प्रति ही आपका डेब्ट है, वो गुरु जहां से पढ़ा वो भी तो आप इनडायरेक्टली आपके प्रति आप उसका भी एहसान है। तो वो पूरा सिस्टम, वो जो नॉलेज का फ्लो करने का जो सिस्टम है, उन सब के प्रति हमारा वो अंदर कुछ करने का भाव होना चाहिए। जब भी हम भूल जाएं, दूसरी धागा याद दिलाती है। तीसरा देव ऋण है। जिनका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, वो हवा हो, पानी हो, आकाश हो, सूरज हो, धरती हो, ईश्वर हो, ईश्वर से लेकर वो हर वो सिंगल एंटिटी, थिंग और बींग, मैटेरियल और नॉन मैटेरियल, सेंटियंट और इनसेंटियंट, जिसका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, मैं जैसा हूं उसमें मेरे माँ बाप का कंट्रीब्यूशन है, मेरे एजुकेटर का कंट्रीब्यूशन है, हवा का, पानी का, आग का, सूरज का, पृथ्वी का, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो जिसका मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन है, उन सबके प्रति मेरा कुछ ड्यूटीज है, कुछ कर्तव्य है, आई हैव टू डू फॉर देम समथिंग। वो रिमाइंड करता है आपका तीसरा धागा। अगर आप ये तीनों ऋणों से आगे बढ़ गए, इन तीन ऋणों को आपने चुका लिया, तो फिर आप जनेऊ फेंक सकते हैं। इसीलिए दो ऐसा ओकेजन होता है जहां आप जनेऊ, शास्त्र के अनुसार जहां आप जनेऊ को ना पहन सकते हैं, जब आप संन्यास हो, दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि आपकी अब जिंदगी के कोई मैटेरियल वर्ल्ड में कोई लेन देन नहीं रहा, ना मां बाप से, ना दुनिया से, किसी से नहीं। आपको पता है ना, संन्यास लेने वालों की अंत्येष्टि संस्कार भी कर दिया जाता है, मर गया अभी इसका नया जन्म है, या जब हम मर जाते हैं तो पूरी जिंदगी भर वो याद दिलाता है। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया उपनयन संस्कार का, कितना इंपॉर्टेंस और कितना पावरफुल है। अगला होता है वेदारंभ। बच्चा जब जाता है, पहली बार पढ़ाई शुरू करेगा, तो आज भी गांव में आप देखेंगे बहुत सारे, जब हम छोटे थे तो जो पहली बार पढ़ाई शुरू, तो वो खड़ी पकड़ाते थे, खड़ी समझ में आता है कि नहीं, जो स्लेट खड़ी है, तो खड़ी में वो मां लिखवाते थे ओम, पहले तो ओम लिखते थे, अब ओम हट गया, आप तो लिखते हैं तीन जीरो लगाते हैं, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, ये उसी चीज का मॉडिफाइड फॉर्म हुआ, जहां पहले हम ओम बच्चे को सिखाते, कान में बच्चा पैदा होने के बाद उसके कान में ओम की ध्वनि नाद डालते थे, गायत्री मंत्र सिखाते थे, वहीं से पढ़ाई की शुरू होती थी। पहले वेद शास्त्र वगैरह पढ़ते थे, आज वेद शास्त्र ना पढ़े, कुछ भी पढ़े, पर वो ओमकार ईश्वर का नाम और गायत्री मंत्र ईश्वर के संसार को समझने का जो मंत्र है, इन दोनों के साथ हम पढ़ाई आरंभ करते थे। समावर्तन, यूएसए में इसको बड़े अच्छी तरह सेलिब्रेट किया जाता है, समावर्तन संस्कार, उसका नाम आप ग्रेजुएशन करते हैं। अब यहां तो ग्रेजुएशन हर वो मतलब बच्चा केजी से फर्स्ट ग्रेड जाए तो भी ग्रेजुएट ग्रेजुएशन से नहीं, फिफ्थ ग्रेड पास करके मिडिल स्कूल जाए तो भी ग्रेजुएशन, हाई स्कूल पास करे ग्रेजुएशन, यहां बड़े लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और उनको देख करके हमारे इंडियन कम्युनिटी भी सेलिब्रेट करता है, पर वो भूल जाते हैं ये ग्रेजुएशन सेरेमनी हमारा कितना ट्रेडिशनल और कितना इंपॉर्टेंट सेरेमनी के रूप में हम करते थे, और इसका नाम था समावर्तन संस्कार। बच्चा गुरुकुल गया पढ़ लिख करके, पढ़ाई पूरी हुई तो वो आता है, तो उसका समावर्तन संस्कार होता है। अगर उसके रूल्स रिचुअल्स को आप समझें कितने सुंदर और कितने आपको आह्लादित करेगा कि आपके हजार हजार सालों के ट्रेडिशन कितने इवन आज भी कितने अपडेटिंग है, कितने कंटेम्प्रेरी है। पर क्योंकि हमें वो पता नहीं तो हम यूएसए में रहकर इनसे देख के करते ग्रेजुएशन, समावर्तन संस्कार। बच्चे यहां भी यही करते हैं, ट्वेल्थ के बाद बाहर चले जाते हैं, पांच सात साल आठ साल पढ़ के आते हैं तो हम ग्रेजुएशन करते हैं। पहले भी होता था, बच्चा जब पूरी पढ़ाई करके घर आता था तो उसको समावर्तन कहते थे। बच्चा ग्रेजुएट हुआ, अब क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब वो घर गृहस्थी बनाएगा, जॉब ढूंढेगा, काम धंधा करेगा, पैसा कमाएगा, शादी करेगा, घर गृहस्थी बस आएगा, विवाह संस्कार। पर अब कोर्ट में भी, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, बिना शादी के में भी रह सकते हैं, पर अगेन उसको सेलिब्रेट करने का नाम विवाह संस्कार है। फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करते हैं, और हर संस्कार में एक और इनविजिबल फ्रेंड को आप इन्वॉल्व करते रहते हैं, वो है ईश्वर, जो आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके घर में है, सब जगह है। वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है, फर्स्ट फैमिली मेंबर वही है। उसके भी उसको अगर ना बुलाएं, बाकी सबको बुलाएं, तो कोई मतलब नहीं बनता। तो यहीं से आता है रिलीजियस पार्ट, जहां आप हवन करते हैं, होम करते हैं, या जो दूसरे तरह की आप रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, ईश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये फील करने कराने के लिए कि हमारे इस उत्सव में हम ईश्वर भी हमारे साथ है, वो भक्ति भाव बनाए रखने के लिए। तो अविवाह संस्कार करते हैं, फिर चक्र पलट जाता है। पहले मां बाप ने हमें गर्भाधान से लेकर के बड़ा कराया, शादी कराया, अब हम मां बाप बनते हैं, हमारी अपनी दुनिया होती है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति पत्नी हैं, हमारा घर है। तो शास्त्र कहता है जब तुम्हारे बच्चे, आजकल भी रिटायरमेंट होता है, रिटायर्ड लाइफ होता है, मोस्ट ऑफ पीपल कंफ्यूज्ड होते हैं, जब काम से रिटायरमेंट लेते हैं दिमाग समझ में नहीं आता है करे क्या, डिप्रेशन आ जाता है, लोनली फीलिंग होती है, क्या करें, एक तो आदत पड़ी हुई थी सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना या करना, तो समझ में नहीं आता है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने सिस्टम बनाया था, लाइफ के हर वो चीज को एंजॉय करो, पहले से प्लानिंग के साथ करो। और उस रिटायरमेंट लाइफ का नाम है वानप्रस्थ आश्रम। अब कब ले, जब हमारे बच्चे बच्चे वाले बन जाए, मतलब जब हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएं, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब घर में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब बच्चों की अपनी जिम्मेदारी है, वो अपनी दुनिया देखें, एंजॉय करें, हम उनके साथ रहेंगे। तो क्या होता है आपको पता है, जब सास ससुर घर में रहते हैं, जब मां बाप घर में रहते हैं, क्या होता है पता है, कितनी लड़ाइयां, झगड़े। अब दोष किसी का भी हो, झगड़ा होना ही होना है, क्योंकि एक कपल जो 30 40 50 साल से घर में डोमिनेट करता था, अब एक यंग कपल आए, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते, नेचुरली उनका टाइम है, वो फिर कब अपने मर्जी से घर चलाएंगे, वो भी राइट है, मां बाप भी राइट है, भाई हम घर के मुखिया हैं, पाला पोसा बड़ा किया, हमारा राइट बनता है कि हमारी चले। तो इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, इट्स अबाउट एवरी पर्सन हैज इट्स ओन राइट टू एंजॉय हिज लाइफ। जब मां बाप घर में रह के डिक्टेट करने लगते तो बच्चे अपने लाइफ को जी नहीं पाते। भारत में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्यों, हम वो आश्रम सिस्टम को भूल गए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा वानप्रस्थ, रिटायरमेंट लो, जॉब से नहीं, घर से, घर की काम से छुट्टी। आप इसका नहीं कि आप काम करना बंद कर दो, काम करोगे पर बच्चों के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। तुम बिजी रहोगे घर के बच्चों के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए। अब तुम्हारा फैमिली ये चार मेंबरों का, आठ मेंबरों का सदस्य नहीं होंगे, अब तुम्हारे फैमिली लाखों करोड़ होंगे। समाज सेवा में इन्वॉल्व हो, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट, जिस तरह का इंटरेस्ट है इन्वॉल्व हो। नंबर टू, सिर्फ समाज सेवा में नहीं, अपने आप को कोशिश करो डिटैच करने की। फैमिली से डिटैच होने के लिए बड़ा फैमिली बनाओ, अपने से डिटैच करने के लिए बड़े चीजों से इन्वॉल्व हो, ईश्वर के साथ मन को लगाने की कोशिश करो। पहले दुनिया बहाना बनाया, बच्चे हैं, परिवार हैं, पैसा कमाना है, घर बनाना है, अब बहाने खत्म हो गए। अब तो कम से कम ईश्वर में मन लगाओ, प्रभु भक्ति करो और समाज की सेवा करो, नर नारायण की सेवा करो, इंसानों को मनुष्य भगवान समझ के उनकी सेवा करो, पशु पक्षियों का सेवा करो। जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है जाओ सोसाइटी में भला करो और ईश्वर की पाने के लिए कोशिश करो, भक्ति करो, साधना करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, जो भी जिस रास्ते में तुम्हें ईश्वर मिल सकता है उसको समझ के जान करके उसके लिए करो। वानप्रस्थ। फिर उस जो वानप्रस्थ लेने की जो सेलिब्रेशन है उसको भी सेलिब्रेशन करना है, रिटायरमेंट की सेलिब्रेशन, उसको कहते हैं वानप्रस्थ संस्कार। फिर आप करेंगे सन्यास। लाइफ का जो फोर्थ पार्ट है, पहले आपकी स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ हाउस होल्ड लाइफ जहां आप एंजॉय करते हैं, फिर वानप्रस्थ लाइफ जहां आप धीरे धीरे फैमिली से डिटैच्ड होते हैं, सोसाइटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अपने ईगो को कम करके ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब पूरी तरह जो लास्ट क्वार्टर है वो सिर्फ एंड सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए। सबका भलाई हो गई, अब अपनी भलाई करनी है, अपनी भलाई जहां मुझे इस जीवन में और अगले जीवन में भी परमानंद की प्राप्ति हो। और उसके लिए एक ही रास्ता है, डिटैचमेंट, वैराग्य। दुनिया के हो हर चीज से डिटैच्ड हो जाओ, सिर्फ अपने आप को जानने की, समझने की, रियलाइज करने की कोशिश करो। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सन्यास, जहां आप सब कुछ छोड़ देते हो, सब चीजों में मन को हटा लेते हो, खुद को रियलाइज करने की कोशिश करते हो। और इस प्रोसेस में आप खुद को भी रियलाइज करते हो और ईश्वर को भी रियलाइज करते हो। रेनुंसिएशन, स्टेज ऑफ रेनुंसिएशन, ये है खुद को खुद के लिए सोचना, खुद के लिए। दैट इज कॉल्ड संन्यास आश्रम। और जब समय आए, हमारे हाथ में नहीं है, जरूरी नहीं कि हम संन्यास आश्रम के बाद ही मरे, पर जनरली यही ट्रेंड है, कोई पहले भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। एंड प्रिपेयर आवर सेल्फ कि जब ऐसी सिचुएशन आए कि हम मरे, उसके लिए भी हमारी तैयारी, प्रिपेयर रहना चाहिए। कब मरेंगे कोई पता नहीं, मरने के बाद का जो संस्कार है वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे बच्चों के हाथ में है। पर ये संस्कार बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। इष्टि कहते हैं यज्ञ को, हवन को, अंत द लास्ट राइट, लास्ट हवन। पूरी जिंदगी में आपने हवन किया, हर वो सेलिब्रेशन में, हर वो संस्कार में, हर वो अच्छे और बुरे में ईश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश की, पर जो लास्ट हवन होगा उसमें आहुति क्या होगी? वही घी सामग्री रहेंगे। वो आजकल करोसिन और पेट्रोल डाल के हवन करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार भारत में। पर स्वामी जी कहते नहीं, ये तो अपमान है, आप वही घी और सामग्री प्रयोग करिए जहां हमारा अपना शरीर आहुति में अफर्ड होता है। शरीर यहीं तक है, भस्मांतम शरीरम, ये बॉडी वहीं तक है जब तक वो जल ना जाए। डालते हैं वही घी सामग्री के साथ स्वाहा की आहुति दी जाएगी जहां हमारा शरीर अफर्ड हो जाएगा हमारे बच्चों के द्वारा। इसी के साथ हमारे ये जीवन जहां कंसेप्शन से शुरू हुआ, मां बाप के कंसेप्शन से बॉडी के शरीर में जलने तक हम ये साइकिल का एक पार्ट खत्म हुआ, फिर एक नए शरीर लेकर नए जन्म लेंगे। तो ये जो जीवन का पैदा होने की शुरुआत से लेकर मरने तक हर वो जो स्पेशल इंसिडेंट है, जो स्टेज है, उसको सेलिब्रेट करना, उसको एंजॉय करना और लाइफ में बदलाव लाते रहना, सिचुएशन के हिसाब से अच्छी अच्छी चीजों को सीखना, बुरे चीजों को हटाने की कोशिश करना, फैमिली और सोसाइटी को साथ लेकर चलना, इन्हीं का नाम है संस्कार। और ये 16 संस्कार हमारे वैदिक ट्रेड्स संस्कार, वैदिक धर्म के और विचारों का भारतीय परंपरा में के एक बहुत बड़ा स्थान होता था, बच्चों इंसानों को बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कुछ हद तक आज बहुत सारे जगह कुछ संस्कार बचे हुए हैं, कहीं 2 संस्कार हैं कि 4 संस्कार, 5 संस्कार, 10 संस्कार, कुछ ना कुछ रूप में कुछ संस्कार बचे हुए हैं। तो जितना भी बचे अच्छा है कि हम संस्कारों को समझें, करें ना भी करें, जाने हमारा पास्ट कितना भव्य था, कितना सुंदर था और हम क्या मिस करते जा रहे हैं। ईश्वर हम सबको अच्छा संस्कार दें, अच्छी बुद्धि दें, जीवन में सुखी रहें। इसी बात के साथ ओम शांति शांति।